ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय एकता दिवस पर कल गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रतीक के रूप में एकता परेड का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की समय सारणी घोषित की। बीजापुर जिले से सुरक्षा बलों ने 7 माओवादियों को किया गिरफ्तार। कोंडागांव जिले में 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और मौसम विभाग के अनुसार कल मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में हो सकती है भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कल गुजरात के केवड़िया में एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रतीक के रूप में एक शानदार एकता परेड का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परेड का उद्घाटन करेंगे। हर साल 31 अक्टूबर को एकता नगर में यह परेड आयोजित की जाएगी। पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश में बड़े स्तर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा।
रन फॉर यूनिटी को बड़े स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिला, पुलिस स्टेशन, सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। उसके बाद देश का प्रत्येक नागरिक देश की एकता और अखंडता के लिए शपथ लेने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
श्री शाह ने कहा कि यह परेड सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हो रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की समय सारणी घोषित कर दी है। दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षा 9 अप्रैल तक चलेगी, वहीं 12वीं की परीक्षा 10 मार्च को सम्पन्न होगी। परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी। परीक्षा से संबंधित समय सारणी CBSE की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov/in पर देखा जा सकता है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जनजाति गौरव दिवस की तैयारियों को लेकर आज रायपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया गया है।
15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और उनकी जयंती का 150 साल भी चल रहा है। उन्हीं के यादगार में 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित हुआ है। पिछले साल भी हम लोग बहुत अच्छे से मनाए थे और इस साल भी अच्छे से जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम हमारे प्रदेश में हो, इसके लिए आज एक दिन का एक कार्यशाला का आयोजन हुआ है। जनजातीय गौरव दिवस के लिए हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी आमंत्रित किया है और मुझे विश्वास है कि उनकी सहमति मिलेगी।
कार्यशाला को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने भी संबोधित किया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ की गिधवा परसदा में जैव विविधता, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और इको टूरिज्म के विकास के लिए सहमति दे दी है। इस संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय वन मंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात कर गिधवा परसदा आर्द्रभूमि को संरक्षित और विकसित करने का आग्रह किया था। इस पर केंद्रीय मंत्री ने गिधवा परसदा आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट के रूप में चिन्हांकित किए जाने के प्रस्ताव पर सकारात्मक संज्ञान लिया। यह निर्णय छत्तीसगढ़ की जैव विविधता, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और इको टूरिज्म के विकास के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। जल संचयन जनभागीदारी अभियान के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बालोद जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। केंद्र सरकार द्वारा जिले को 2 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस पर राष्ट्रीय जल मिशन की अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा ने बालोद जिले की कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा को शुभकामनाएं दी हैं। बीजापुर जिले के उसूर और इलमिड़ी थाना क्षेत्र से आज सुरक्षा बलों ने 7 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। उसूर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार 5 माओवादियों पर पुजारी कांकेर निवासी एक ग्रामीण की हत्या करने का आरोप है। वहीं इलमिड़ी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार 2 माओवादियों पर आरोप है कि उन्होंने मुजाल कांकेर निवासी एक ग्रामीण की हत्या की थी। इसी जिले में तर्रेम थाना क्षेत्र के गोटुमपल्ली गांव में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा बनाए गए 15 फीट ऊंचे स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। इधर कोंडागांव जिले में आज एक महिला सहित 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाली महिला माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बीजापुर सहित विभिन्न जिलों में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। बीजापुर के जिला कलेक्टर संबित मिश्रा ने इस संबंध में आज राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
हमारे राज्य में भी छत्तीसगढ़ में भी नोटिफाई हो गया है। इतना हमारा एक ही विधानसभा आता है। अभी जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस अभी जैसे 27 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ, 28 तारीख से 3 तारीख तक सभी को ओरिएंटेशन करना और सारे एन्यूमरेशन फॉर्म ईएफ होता है जो एन्यूमरेशन फॉर्म उसका प्रिंटिंग होगा। हमारे बीएलओ को भी हम ट्रेनिंग देंगे और एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन में अपडेट होगा। ये सारी चीजें होंगी।
नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के 13 वर्ष पूरा होने पर कल 31 अक्टूबर को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पद्मभूषण से सम्मानित पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर शामिल होंगे। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के मीडिया समन्वयक अजय श्राफ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि हृदय रोग से पीड़ित 2500 से अधिक वे बच्चे जिनका सफलतापूर्वक इलाज श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में किया जा चुका है, वे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में भारत और कई देशों के मरीज भी शामिल होंगे।
1 तारीख को तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन कल भी एक विशेष कार्यक्रम है। विशेष रूप से पद्मभूषण श्री सुनील गावस्कर जी आ रहे हैं और भारत के सभी राज्य और विदेशों से भी कुछ मरीज, तकरीबन 2500 से 3000 मरीज वो भी वहीं पे रहेंगे।
राजधानी रायपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष मोना सेन ने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड कार्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने फिल्म सिटी परियोजना और फिल्म नीति से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है, जिससे पर्यटन, रोजगार और संस्कृति को मजबूती मिलेगी। श्री आचार्य ने कहा कि इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार के साथ प्रशिक्षण और तकनीकी दक्षता के अवसर मिलेंगे। रायगढ़ जिले के कापू थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार 2 युवक कापू की ओर जा रहे थे और इसी दौरान धर्मजयगढ़ कापू मार्ग में चालहा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस कार ने पैदल चल रही एक महिला को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। कापू पुलिस घटना की जांच कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। चक्रवाती तूफान मोन्था के कमजोर होकर निम्न दाब के रूप में पूर्वी विदर्भ और उससे लगे दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके असर से कल 31 अक्टूबर को प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने 1 नवंबर को उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना जताई है। चक्रवाती तूफान मोन्था का असर बस्तर में भी दिखाई दे रहा है। सीमावर्ती ओडिशा आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की वजह से रेल आवागमन प्रभावित हुआ है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे दंतेवाड़ा संवाददाता।
बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोन्था के असर से केके रेल मार्ग पर यात्री ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के बीच चिमड़ी पल्ली बोर्रा गुहालू स्टेशन के बीच भूस्खलन से पहाड़ का मलबा ट्रैक पर आ गिरा। घटना के 3 घंटे बाद रेलवे कर्मचारियों ने मौके से मलबा तो हटा लिया, लेकिन खतरे को ध्यान में रखते हुए केके रेल मार्ग पर यात्री ट्रेनों को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। 29 अक्टूबर को विशाखापट्टनम से किरंदुल के बीच चलने वाली पैसेंजर एवं नाइट एक्सप्रेस ट्रेन को आगामी आदेश तक निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि चक्रवाती तूफान के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए 28 अक्टूबर को पहले ही इन ट्रेनों को निरस्त किया गया था। दंतेवाड़ा से आकाशवाणी न्यूज के लिए नरेश मिश्र।
और अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं के दल को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। कोंडागांव जिला प्रशासन द्वारा जिंदगी का सफर सुरक्षित रखे, हेलमेट जरूर पहने की थीम पर हेलमेट बैंक की शुरूआत की गई है। कलेक्टर अनुपुर राशि पन्ना ने कल मसौरा ग्राम पंचायत में हेलमेट बैंक का शुभारंभ किया। और रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल परिक्षेत्र में हाथी के बच्चे का शव बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच में हाथी के बच्चे की मृत्यु पानी में डूबने से होने की जानकारी मिली है। वन विभाग की टीम घटना की जांच कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय एकता दिवस पर कल गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रतीक के रूप में एकता परेड का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की समय सारणी घोषित की। बीजापुर जिले से सुरक्षा बलों ने 7 माओवादियों को किया गिरफ्तार। कोंडागांव जिले में 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और मौसम विभाग के अनुसार कल मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में हो सकती है भारी बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।